फेर के बैठिए, तो आगे आगे बढ़िए। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे साथ श्रीमान अनंत राघव प्रभु प्रवचन देने के लिए उपस्थित है। अनंत राघव प्रभु ने कॉमर्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट किया है, उसके बाद उन्होंने कुछ सालों तक बाहर जॉब भी किया और फिर इस्कॉन चौपाटी जो राधा गोपीनाथ मंदिर है वहाँ पे वे पूर्ण रूप में ब्रह्मचारी के रूप में सेवा प्रदान करने लगे। उस पश्चात वे गोवर्धन इको विलेज में शिफ्ट हुए, यहाँ पे उन्होंने अनेकों अनेकों सेवाओं में भाग लिया और पिछले कुछ सालों से वे गेस्ट रिसेप्शन परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के जो भी VIP गेस्ट आते हैं, प्रभुपाद के शिष्य या और भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनकी वे विशेष रूप से सेवा करते हैं। उसके साथ ही साथ वे एक बहुत ही अच्छे कीर्तनिया हैं, सिंगर है और इस्कॉन गोवर्धन इको विलेज, इस्कॉन चौपाटी, इतना ही नहीं बल्कि इस्कॉन के और भी मंदिरों में और कहीं पे भी रथ यात्रा वगैरह जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें वो बहुत ही अच्छी तरह भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं और अनेकों अनेकों जगहों पे जाके भगवान के नाम का प्रचार भी करते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि अनंत राघव प्रभु हमें प्रवचन देने के लिए उपस्थित है। तो पारंपरिक रूप से 3 बार हरि बोल बोलकर हम अनंत राघव प्रभु का स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है कि 10:30 से 11 बजे तक कीर्तन था, 11 से 12 बजे तक प्रवचन होगा, 12 से 12:30 श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का महाआरती होगा और 12:30 बजे सबके लिए लंच महाप्रसाद होगा। तो हम आपसे विनती करते हैं कि आखिरी तक कार्यक्रम खत्म होने तक यहाँ पे रहे, बैठे रहे। हरे कृष्ण।
ये कैसे चेंज कैसे होता है? पीछे कुछ कुछ ऐसे नहीं होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावन चारी जमुना तीरावन चारी जय राधा माधव
ಕುಂಜಬಿಹಾರಿ ಒಪಿಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಜಯ ರಾಧಾವೃಂದಾವನ್ ಬಿಹಾರಿ ರಾಧಾವೃಂದಾವನ್ ಬಿಹಾರಿ ರಾಧೆ ಪ್ರಭುಪಾದ 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 ಜಯ ಪ್ರಭುಪಾದ ನೀತಾಯ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಗೌರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಶ್ರೀ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ್ ಕೀ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಜಯ ನಿತಾಯ ಗೌರ ಪ್ರೇಮನಂದೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಖಯ ಚಕ್ಷುರುಲ್ಮಿನಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೇ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧಾರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೀನ ತಾರಿಣೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೊ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಭಿ ಭಕ್ತೋ ಕಾ ಅತಿಥಿಯೋ ಕಾ ಆಜ್ ಕೆ ಇಸ್ ರವಿವಾರ ಕೆ ಸಂಡೇ ಫೀಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಸ್ವಾಗತ್ ಹೈ. ತೊ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಛಾ ಲಗಾ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ದೂರ್ ದೂರ್ ಸೇ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲೇ ಆಯೇ ಹೈ. ಹಮಾರೆ ಗುರುಕುಲ್ ಕೆ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹೈ. तो अभी कुछ ही दिनों में यहाँ पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम होगा, तो पूरे विश्व भर में हर जगह पर मनाया जाएगा। तो जन्माष्टमी के इस उपलक्ष्य पर हमने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं का और विशेष करके भगवान कृष्ण की महानता के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज का शीर्षक है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। आप में से कितने लोगों ने शब्द सुना है भगवान, कितने लोगों ने सुना है पूर्ण पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? हाथ उठाइए, उत्तर दीजिए। पुरुषोत्तम का क्या अर्थ है? कितने लोग का मौन व्रत है आज, बोलिए। यस माता जी, पुरुषोत्तम, उत्तम मतलब टॉप मोस्ट, पुरुषोत्तम मतलब जो पुरुष सबसे उत्तम है वो पुरुषोत्तम, और पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब पूरी तरह से टॉप मोस्ट पुरुष, मतलब पूर्णतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, ऐसा कहा गया है। जैसे भगवान रामचंद्र जी, ऐसा कहा जाता है भगवान रामचंद्र जी को हम क्या कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। कितने लोगों ने सुना ये, मर्यादा पुरुषोत्तम, मतलब वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है लेकिन एक सीमा में, एक मर्यादा में। इसके लिए हम रामलीला में देखते हैं कि भगवान रामचंद्र हालांकि भगवान है, संपूर्ण शक्ति है, लेकिन एक साधारण मनुष्य के समान वो तपस्या करते हैं, फिर वनवास जाते हैं और तत्पश्चात रावण के साथ युद्ध करने के बाद सीता माँ को अपने साथ लेके आते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण लीला करते हैं तो भगवान छोटे बालक के रूप में ही अपनी दिव्य लीलाओं का आस्वादन करवाते हैं, अपने बचपन से ही सबको दिखा देते कि मैं ही हूं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान पूर्णतः अपनी लीलाओं का आस्वादन सबको करवाते हैं। जैसे वृंदावन में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है मानसी गंगा। क्या है? मानसी गंगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में थे तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर खेल रहे थे, तो अचानक वहां पर एक राक्षस आ जाता है। उस राक्षस का नाम था वत्सासुर। क्या नाम था? वत्सासुर एक गाय के वत्स, मतलब एक छोटे बछड़े के रूप में था, और वो भगवान को मारने आ गया। तो जैसे भगवान के पास आया, भगवान ने उसके पैर पकड़ के उसको जोर जोर से घुमाया और उसको फेंक दिया। तो जैसे इतना जोर से उसको घुमाया कि उसने अपने प्राण त्याग दिए, और जैसे ही वो जमीन पर गिर गया, वो उसने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो जैसे ये हो गया तो भगवान के जो मित्र थे ग्वाल बाल, उनके जो मित्र थे वो बोले, अरे कृष्ण ये क्या किया? तो बोले, मैंने क्या किया? तो बोले, तुमने इस गाय, मतलब गाय के रूप में ये व्यक्ति आया है, हाँ, वत्सासुर भले असुर है लेकिन ये गाय के रूप में है, तो तुमने गो हत्या कर दी। तुम तो कौन हो? भगवान कृष्ण का नाम क्या है? गोपाल। गोपाल मतलब गाय की रक्षा करने वाला व्यक्ति। तो ये गोपाल है कृष्ण का नाम, लेकिन अभी तुमने ही गाय की हत्या कर दी तो लोग क्या कहेंगे? तो भगवान ने कहा, देखो यार, मैं तो आप लोग के साथ खेल रहा था, वो खुद मेरे पास आया और मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा, हाँ, तो मेरी क्या गलती है इसमें? तो बोले, नहीं नहीं नहीं, तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो बोले, अच्छा। बोले, क्या करना पड़ेगा? बोले, जाओ तीर्थ यात्रा पे जाओ, अलग अलग गंगा में, जमुना में, अलग अलग इसमें स्नान करो, और कहा जाता है कि हरिद्वार में या कोई भी पावन स्तर पर स्नान करने का बहुत फल है, तो आप उधर जाके स्नान करके आओ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे मैं क्यों इतना दूर जाऊं, गंगा को यहीं बुला लेता हूं। तो भगवान कृष्ण ने अपने मन से गंगा का स्मरण किया तो गंगा प्रकट हो गई, बोलिए क्या सेवा। तो फिर भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं अभी स्नान करना चाहता हूं। तो तुरंत गंगा देवी एक जलाशय के रूप में प्रकट हो गई, और क्योंकि वो मन से प्रकट हुई उसके लिए उसका नाम पड़ गया मानसी गंगा। तो ये भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तुरंत अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। तो आज हम भगवान कृष्ण के बारे में वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो उसके पहले भारत के लोगों में बहुत सारी बात ये हमारे मन में प्रश्न आता है, क्या एक भगवान है कि अनेक भगवान है, वन गॉड और मेनी गॉड। भारत में ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवता हैं, और उतने सारी देवी देवता हैं, हम किसकी पूजा करें या सबकी पूजा करें। तो क्या है इसका तात्पर्य, क्या वास्तविक में कहना चाहते हैं। पूरे विश्व हम में हम देखते हैं कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म है, और अलग अलग धर्म का अलग अलग ग्रंथ है। जैसे हिंदू लोग गीता पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग कुरान पढ़ते हैं, ईसाई लोग बाइबल पढ़ते हैं, इस प्रकार से अलग अलग ग्रंथ है। तो वास्तविक में क्या अर्थ है धर्म का, क्योंकि धर्म जो है भागवतम में धर्म का डेफिनेशन दिया गया है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान कहते हैं कि धर्म क्या है, जो भगवान ने कहा वो धर्म है। आजकल लोग कहते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ, क्यों, क्योंकि मैं उस धर्म से हूं। लोगों को भगवान से कुछ नहीं लेना देना, लोगों को लड़ाई करना है क्योंकि मैं श्रेष्ठ हूं या मेरा धर्म श्रेष्ठ है, क्यों, क्योंकि वो अहंकार की बात हो गई। लेकिन वास्तविक धर्म क्या है, धर्मस्तु शास्त्रात् भगवत प्रणीतम, जो भगवान कहते हैं, भगवान जो हमको कहना चाहते हैं वो वास्तविक धर्म है। तो हम देखते हैं कि जो भी धर्म है, जो भी भगवान कहते हैं या जो भी भगवान की शिक्षा है, वो देश काल पात्र के हिसाब से होती है। अंग्रेजी में उसको कहते हैं टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। अलग अलग काल में भगवान ने अलग अलग लोगों को अलग अलग उपदेश दिया था, देश काल पात्र के हिसाब से। तो उसी प्रकार से हमारा जो अलग अलग धर्म है, वो अलग अलग धर्म अलग अलग प्रकार के अलग अलग समय पे आया है। इसके लिए आप देखेंगे जब ये जीसस क्राइस्ट, जिनको भगवान का एक बेटा माना जाता है या मसीहा माना जाता है, जीसस क्राइस्ट ने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। उन्होंने हमेशा कहा है आई एम सन ऑफ गॉड। तो अगर आप बाइबल भी पढ़ोगे तो बाइबल में जीसस क्राइस्ट लिखते हैं, ओ मैन ऑफ लेस फेथ, आई हैव लॉट टू टेल यू बट यू कैन नॉट टेक इट नाउ। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि मुझको आप लोगों को बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ बताना है, लेकिन अभी अभी आप नहीं समझ पाओगे, अभी बहुत आपको सीखना बाकी है। हमारे आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से जो एक पहली कक्षा में जो बच्चा पढ़ता है उसको दसवीं का एलजेब्रा ज्योमेट्री सिखाएंगे तो समझ पाएगा, उसको पहले एक पहली दूसरी तीसरी चौथी कक्षा करने के बाद जब वो आठवीं नौवीं दसवीं में आता है तब वो समझ पाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अभी मैं ये आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। और ये देखिए, और ये परिस्थिति देखिए, जिनके लिए उन्होंने उतना किया अंत में उनको ही किले पे लटका दिया। क्यों, क्योंकि उनकी जो बुद्धि थी इतनी प्रकाशित नहीं थी, ये इस परिस्थिति में कहा है। और इस परिस्थिति में वो प्रचार करते थे जीसस क्राइस्ट, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर तत्पश्चात हम मोहम्मद के बारे में बात करते हैं, जो भी वो उन्होंने भी अपने आप को एक मसीहा कहा है, अपने आप को भगवान कभी नहीं कहा, तो उन्होंने भी अपने आप को हमेशा मैं भगवान का एक मसीहा हूँ करके कहा है। तो उन्होंने भी अपने अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग चीज़ें बताई है। हदीद में भी कहा गया है। तो उस समय की परिस्थिति बड़ी डिफिकल्ट परिस्थिति थी, और उस समय भी उन्होंने अपने अनुयायियों को उस परिस्थितियों से कैसे बाहर आना है उसके बारे में बताया गया है। तो ये भी एक प्रकार का ये था धर्म, उन्होंने उस समय बताया, और उस समय भी बड़ी कठिन परिस्थिति थी। तत्पश्चात 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने गीता कहा है। गीता में भगवान कृष्ण ने वास्तविक मनुष्य जन्म में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए बड़ी सरलता से हमको बताया। जिस प्रकार से आप लोग मोबाइल लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, एक पुस्तक आता है जिसमें कहा गया है कैसे उसको यूज़ करना है, कैसे उसको बंद करना है, चालू करना है, ये सब चीज़ बहुत ही अच्छे से बताया। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण गीता में 18 अध्याय में कहते हैं कि वास्तविक में हमको इस जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बड़ी सरलता से भगवान ने गीता में कहा है। और जो व्यक्ति इस मैनुअल को नहीं पढ़ता तो वो समझ नहीं पाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक बहुत ही महंगा फोन खरीदा, और जैसे आपने फोन खरीदा आपने अपने मित्र से बात करने लगे, और आधा घंटा एक घंटा बात करते गए फिर आपका जो फोन है वो गर्म हो गया। तो फोन गर्म हो गया, आप डर गए, नया फोन था, क्या हो गया? तो फोन को ठंडा करने के लिए आपने उसको ठंडे पानी में डाल दिया। तो जैसे उसको ठंडे पानी में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, फोन में पानी चला जाएगा, फोन खराब हो जाएगा। अभी आपने एक दिन भी नहीं हुआ वो फोन लेकर, आप वो दुकान में जाओगे और बोलोगे ये लो, आपने एक साल का वारंटी दिया था, ले लो फोन, नया फोन दो, क्या वो नया देगा? वो बोलेगा साहब नहीं देंगे। बोले क्यों? आपने हमारा मैनुअल नहीं पढ़ा, मैनुअल में लिखा है कि कृपा करके उसको कितना चार्ज करना है, कितना नहीं करना है, उसको पानी से दूर रखना चाहिए, उसको अन्य वस्तुओं से ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग चीज़ों को बताया। तो ये भगवान ने गीता में बताया है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अलग अलग श्लोकों में भगवान ने अपनी बारे में बताया है, अलग अलग योगों के बारे में बताया। भगवान कृष्ण ने कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, इस प्रकार से अलग अलग योगों का वर्णन करने के पश्चात भगवान ने भगवद गीता में जो भक्ति योग उसके बारे में भी वर्णन किया है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने तीन गुणों के बारे में वर्णन किया है कि वास्तविक में तीन गुण, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों से कैसे परे होना है उसके बारे में भगवान ने बताया है। फिर अलग अलग प्रकार की श्रद्धा के बारे में भगवान ने बताया है, और अंत में भगवान कृष्ण ने कहा है कि किस प्रकार से आप इस दुनिया में भौतिक जगत में रहने के बाद, इस दुखालय में रहने के बाद, अगर आप मेरा नाम लेते हो, अगर आप मेरी उपासना करते हो, अगर आप मेरी भक्ति करते हो, तो इस जन्म में मृत्यु के पश्चात आप मेरे पास आ जाओगे। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को त्याग करके, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उस धर्म को पालन करेंगे तो क्या होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, और केवल मेरे शरण में अगर आप आओगे, माम एकम शरणम व्रजह, तब क्या होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सब पाप ले लूंगा, मैं आपके सब पाप को स्वीकार कर लूंगा और मोक्ष प्रदान कर लूंगा। मोक्ष ईशामी मां सूचह, मां सूचह अर्थात घबराओ मत। जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो लोग बोलते हैं अरे बेटा डरो मत। महाराष्ट्र में कहते हैं भ्यू नको मिया है तुझा पाटीशी। तो मां सूचह मतलब क्या, भगवान कह रहे हैं कि डरो मत, तुम्हारे सभी पापों से मैं मुक्त कर दूंगा तुमको। ये भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, वो भी 18वें अध्याय में। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण गीता में भी ये कहते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कितने वेद हैं, जोर से चार कौन से सुनाई नहीं दे रहा, एक एक करके बोलो। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चार वेद है। अभी ये मालूम है आपको ये वेदों की रचना किसने की? वेदों की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने, व्यासदेव, व्यासदेव जिनको वेद व्यास भी कहा जाता है। तो व्यासदेव ने इन चार वेदों को रचित किया। फिर चार वेदों को रचित करने के बाद उन्होंने 108 उपनिषद लिखे, उन्होंने 18 पुराण लिखे। उसके पश्चात उन्होंने सोचा कि इतना फिलॉसफी लोग पढ़ नहीं पाते, तो उन्होंने सोचा थोड़ा स्टोरी लिखेंगे। तो रामायण, रामायण तो वाल्मीकि जी ने लिखे, उन्होंने महाभारत लिखा। महाभारत पूरा स्टोरी है, किस प्रकार से युद्ध होता है, युद्ध कांड होता है, फिर अलग अलग लीलाओं के बारे में उन्होंने कहा। फिर महाभारत लिखने के बाद उन्होंने फिर सोचा कि और क्या लिखना चाहिए। फिर उन्होंने संपूर्ण वेदों को एक सार बना के वेदांत सूत्र बनाया। सूत्र मतलब फॉर्मूला, जैसे मैथ्स में होता है ना फॉर्मूला, वैसे उन्होंने संपूर्ण चीज को एक छोटे से फॉर्मूला में बिठा दिया। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा एक फॉर्मूला है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब हमको भगवान के प्रति जिज्ञासा निर्माण करनी चाहिए, उसका अर्थ यह है। तो ये एक सूत्र के हिसाब से उन्होंने ऐसे वेदांत सूत्र की रचना की। हाँ, जैसे आज की तारीख में बहुत लंबा फाइल होता है तो उसको कन्वर्ट करके जिप फाइल में कर देते हैं, तो एक फाइल में बहुत सारा डेटा आ सकता है। उसी प्रकार से जैसे अभी कंप्यूटर है, कंप्यूटर में 1 TB का डेटा होता है, लेकिन आजकल लोगों के पास इतना एक पेन ड्राइव रहता है, उसमें 1 TB लेके घूम सकते हो। तो इतने सारे वेदा का इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या किया, वेदांत सूत्र के इसमें माध्यम में डाल दिया। लेकिन वो भी लोग नहीं समझ पा रहे थे। तभी इतना सब रचना करने के बाद व्यासदेव बड़े दुखी थे। वो सोचने लगे कि मैंने इतना सब ग्रंथों का मैंने ग्रंथ को लिखा, इतने सब पुराणों के बारे में वर्णन किया, लेकिन फिर भी मेरे हृदय में एक संतुष्टि नहीं है। तो ऐसा सोच रहे थे तभी उनके गुरु आते हैं। उनके गुरु का नाम क्या था? नारद मुनि। नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं, नारायण नारायण करते करते, और व्यासदेव को कह पूछते हैं, अरे ये क्या मुंह बना के रखा है, क्या हो गया, दुखी हो क्या? हालांकि नारद मुनि जानते थे, लेकिन वो उनसे सुनना चाहते थे, और उनके शिष्य थे, तो अपने गुरु को नतमस्तक होकर बताने लगे कि मैंने इतने वेद पुराण उपनिषद इतने ग्रंथों की रचना की, लेकिन अभी भी मेरे मन में वो आनंद नहीं है, वो संतुष्टि नहीं है। तो नारद मुनि ने कहा कि तुम्हारे हृदय में आनंद क्यों नहीं है, क्योंकि तुमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं किया। तुमने लोगों को केवल धर्म अर्थ और काम और मोक्ष के बारे में बताया है, लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम जो है, उसके बारे में मैंने नहीं बताया। तो ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में पूरी महिमा हो, पूरी महात्मा हो, पूरी महिमा हो, और ऐसा ग्रंथ लिखो जो संपूर्ण वेद पुराण उपनिषद सबका सार हो, सबका निचोड़ हो, तब लोग जो पढ़ेंगे वो आध्यात्मिक आनंद में नाचने लगेंगे, उस समुन्दर में गोते लगाएंगे, इतना आनंदित वो स्थान है। और तत्पश्चात व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का निर्माण किया, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को लिखा। तो श्रीमद् भागवतम वास्तविक क्या है? श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान कृष्ण है, जो एक ग्रंथ के रूप में आए हैं। जैसे इस मंदिर में हम लोग आते हैं, दंडवत करते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान एक मार्बल के रूप में आए, एक प्रतिमा के रूप में आए हैं। हमारे शास्त्र में ऐसा कहा गया है, प्रतिमा नाही तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। कि ये जो विग्रह है वो केवल एक ऐसी मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार से जब भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं श्रीमद् भागवतम। तो ये श्रीमद् भागवतम का उन्होंने निर्माण किया, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ को लिखा। और श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखने के बाद व्यास देव ने कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा। मतलब उनके हृदय में शांति, उनके हृदय में आनंद जो ढूंढ रहे थे वो उनको प्राप्त हुआ। क्योंकि उनके गुरु महाराज ने क्या कहा था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में आप वर्णन कीजिए। और श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया है, सवे पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में यह श्लोक आता है। क्या श्लोक आता है कि वास्तविक में हमारा सबसे बड़ा धर्म क्या है, सवे पुंसा परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षदे। जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है, चाहे वो मनुष्य हो या किसी भी जाति का हो, उस व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म क्या है, यथो भक्तिर अधोक्षजे। मतलब भगवान अधोक्षज की भक्ति करना सबसे बड़ा धर्म है। और वो भी भक्ति कैसी, अहैतुकी अप्रतिहता, मतलब बिना किसी लाभ के और बिना किसी हेतु के और बिना किसी रुकावट के। बहुत बार लोग मंदिर में आते हैं और उनको लगता है कि हम मंदिर में आएंगे, हुंडी में 1 रुपये डालेंगे तो भगवान कितना देगा, तुम 1 रुपया दोगे तो, गाना भूल गए आप लोग, 1 रुपया दोगे तो 10 लाख देगा, ऐसा कोई तो गाना था। तो लोगों को लगता है कि भगवान के पास आएंगे, इतना पैसा डालेंगे तो इतना पैसा मिलेगा। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो भगवान के पास भक्ति से नहीं आते, बिजनेस से आते हैं। उनको लगता है इधर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, FD में डाला तो 5% ही मिलेगा, इधर ज़्यादा मिलेगा, तो उनको लगता है भगवान के पास इसके लिए आते हैं। तो लेकिन भागवतम में क्या कहा है कि उच्च कोटि की जो भक्ति है, इसके लिए मैंने कहा भागवतम जो है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का भक्ति है। उसमें कहा गया है धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर अभी प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे लाभ के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे डायरेक्ट प्रेम। भले भगवान कुछ दे न दे, हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये श्रीमद् भागवत का स्तर है। इसके लिए मैं बता रहा था ना, अलग अलग धर्म अलग अलग काल में आए, तो ये भागवत हमको वो लेवल का शरणागति बताता है। जैसे पांडव के जीवन में हम देखते हैं कितनी कठिनाई आई, कितनी तकलीफ आई, और वो भी कृष्ण के होते हुए। सोचो, कृष्ण के होते हुए इतनी कठिनाई आई उनको। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता तो वो लोग भक्ति छोड़ देते थे। सोचिए, कोई राजा है लेकिन उसको राज्य नहीं मिला, उनको बचपन में मारने की काढ़े षड्यंत्र रचा, उनको जहर दिया गया, और इतना इतना करने के बाद उनकी पत्नियों को भरी सभा में बेइज्जत किया गया। इतना करने के बावजूद उन्होंने भगवान कृष्ण को हमेशा नमन किया, भगवान कृष्ण की भक्ति की। और भगवान कृष्ण स्वयं भागवत में कहते कि मेरे सबसे बड़े भक्त कौन है, पांडव। क्यों? क्योंकि इतनी कठिनाई आने के बाद भी उन्होंने मुझको नहीं छोड़ा। भगवान ने इतना परीक्षा लिया उनका, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा। महाभारत में ऐसी कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन को डर लग जाता है कि अरे, पांडवों के पार्टी में ये बड़े बड़े योद्धा है, ये सेनापति है, ये महारथी है, हमारे इसमें तो बड़े बड़े रथी है, लेकिन फिर भी हमको और योद्धा चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण ने एक बार उनको ऑफर दिया था, कृष्ण ने उनको कहा था कि अगर तुमको मैं चाहिए या मेरी सेना चाहिए, तो वो कृष्ण के पास गए, तभी कृष्ण आराम कर रहे थे। तो तभी कृष्ण आराम कर रहे थे, अर्जुन उनके पैर दबा रहे थे, और जैसे अर्जुन पैर दबा रहे थे तो दुर्योधन डर गए, बोले अरे ये तो पहले से बैठा है, अभी कहीं इसने सेना मांग ली तो क्या हो जाएगा, मैं तो वैसे ही हार जाऊंगा। तो दुर्योधन क्या करता है, भगवान कृष्ण के सर के पास बैठ जाता है, क्योंकि जैसे आंख खुलेगी सबसे पहले मैं मांग लूंगा। तो भगवान सोए हैं, दुर्योधन सर के पास बैठा है, अर्जुन कहाँ बैठा है, पैर के पास। तो अर्जुन पूरे निस्वार्थ भावना से पैर दबा रहा है, और जैसे भगवान की आंख खुलती है दुर्योधन बोलता है मैं पहले आया था, लेकिन कृष्ण बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैंने पहले अर्जुन को देखा है। क्योंकि इसके लिए हम भगवान के दास क्यों बनते हैं, क्योंकि दास हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं, दास हमेशा भगवान के चरणों में रहते हैं, इसके लिए भगवान की नजर सबसे पहले पड़ती है, इसके लिए दास बनना सबसे बुद्धिमानी का काम है। तो भले दुर्योधन भगवान के सबसे पास में बैठे थे, लेकिन भगवान ने क्या कहा, मैं किसको देखूं, मैंने किसको पहले देखा, अर्जुन को। तो अर्जुन बोलो क्या चाहिए था, तो अभी दुर्योधन बोला हो गया, अभी गेम खत्म, अभी ये नारायणी सेना मांग लेगा और हो गया मेरा काम खत्म। तो अर्जुन कहता है हे केशव, हे माधव, मुझको इस दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मुझको केवल तुम चाहिए, आप अगर मेरे साथ में हो तो और कुछ नहीं चाहिए मुझको। तो जैसे ही उसने ये बोला तो दुर्योधन ने बोला बच गए। तो दुर्योधन ने बोला छोड़ो, अभी आपने कृष्ण को अर्जुन ने मांग ही लिया तो मैं सेना से काम चला लूंगा। तो इस प्रकार से नारायणी सेना उसको मिल गई, फिर भी युद्ध हार गया, क्यों, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ था। तो ये परिस्थिति है, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी भगवान ने उनका ध्यान दिया, तो ये भागवत बताता है। और भागवत के तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, एते चमसे कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रयारी व्याकुलम लोके मृगयंती युगे युगे है। इस श्लोक में कहा गया है, एते चमस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा कहा गया है कि इस दुनिया में बहुत सारे अवतार है, लेकिन जो कृष्ण है वो अवतार नहीं, वो अवतारी है, मतलब सभी अवतार कृष्ण से आते हैं। इसके लिए आज के कार्यक्रम का शीर्षक क्या है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। एते चमस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कहा क्या कहा गया है, जैसे समुन्दर में अलग अलग लहरें आती है, आप लोग कितने लोग समुन्दर में गए, समुन्दर के तट में गए, बीच में गए, कितने लोग बता सकते कि एक कितनी लहरें हैं, कोई बता सकता है, कोई गिन सकता है, इतनी सारी लहरें आती है। तो ऐसा भागवत में कहा है कि इतने प्रकार के भगवान के अवतार है, लेकिन भगवान के अवतार के जो स्रोत कौन है, भगवान कृष्ण। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग के घर पे बिजली कभी गई है, लाइट गया है, यहाँ पे गांवों में तो गया होगा। तो जैसे घर पे बिजली जाती है हम क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो घर में एक मोमबत्ती से काम चल जाता है तो हम दूसरा जलाते हैं, तीसरा जलाते हैं, लेकिन सबसे पहला मोमबत्ती जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को अवतारी माना गया है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा गया है। तो 18,000 श्लोकों में अलग अलग अवतारों का वर्णन किया है, पहले 9 स्कंदों में, और दशम स्कंद में केवल भगवान कृष्ण की कृष्ण लीला। अगर आप लोग इस मंदिर में परिक्रमा करोगे, आप लोग जो पहली बार आए हैं, जो ऊपर का भाग आप देख रहे हो वो श्रीमद् भागवतम के पहले 9 स्कंद है, और जो नीचे का छोटा देखोगे वो भगवान कृष्ण की दशम स्कंद की लीला है। आप यहाँ पर देखोगे कंस देवकी को लेके जा रहे हैं, फिर भविष्यवाणी होती है आकाशवाणी, और फिर भगवान अलग अलग राक्षसों का वध करते हैं, तो ये श्रीमद् भागवतम में है 12 स्कंदों में। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान को 4 स्टेजेस में लोग पूजा करते हैं। पहला स्टेज क्या है? फियर, भय। आप में से कितने लोगों ने बचपन में सुना है, अरे भगवान की पूजा नहीं करोगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, सुना है? मम्मी ने कभी सुना, अरे जय जय करो, बापा को जय जय करो या भगवान को जय जय करो, जय जय नहीं करोगे तो क्या होगा, बापा गुस्सा हो जाएंगे, भगवान दंड देंगे। तो बच्चा बचपन से डर जाता है कि नहीं नहीं, इनके पास जाएंगे तो थोड़ा डर के जाना चाहिए। तो लोग डर से भगवान की शरण में आते हैं। आप अगर क्रिश्चियनिटी में भी पढ़ोगे तो क्रिश्चियन धर्म में भी ऐसा कहा जाता है, जो व्यक्ति भगवान या कि जीसस या जो उनके भगवान हैं उनकी पूजा नहीं करता उसको नरक में जाना पड़ता है, ऐसा लोग डर जाते हैं। लेकिन इसके दूसरा स्टेज, इससे बड़ा स्टेज क्या है? लोग डर से नहीं जाते लेकिन भगवान के पास जाते, लगता है कि इनके पास गए तो कुछ मिलेगा, भगवान इच्छा पूरी करेंगे। हाँ, इसके लिए लोग अलग अलग मंदिरों में जाते हैं, जो मांगा वो मिल जाता है। जैसे एक प्रसिद्ध एक्टर था, वो अपने पिक्चर में कहता है कि क्या बोलता है, हे भगवान आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। तो आपने बॉलीवुड के पिक्चरों में देखा होगा कि किस प्रकार से हीरो और हीरोइन पूरे पिक्चर में इधर उधर घूमते रहते हैं, अलग अलग पेड़ के नीचे भागते रहते हैं, और फिर जब हीरो या हीरोइन का एक्सीडेंट हो जाता है तभी उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है, और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर आता है और डॉक्टर वो एक ही डायलॉग बोलता है, क्या बोलता है, मेरे हाथ में क्या है, सब उसके हाथ में है। और एक फेमस डायलॉग क्या बोलता है, इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो वो जो हीरो जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गया, वो मंदिर जाता है पहली बार, और मंदिर जाने के बाद जैसे भगवान के ऊपर उपकार कर रहा है, देखो आज तक कुछ नहीं मांगा लेकिन आज आ रहा हूं, और घंटी बजाता रहता है रात भर, और पता नहीं ऐसा पिक्चर में दिखा जाता है कि एक दिन में वो शुद्ध भक्त बन जाता है, एक दिन में प्योर डिवोटी बन जाता है, और बेचारे भगवान को भी दया आ जाती है कि इसको कुछ तो देना चाहिए, और फिर भगवान कुछ तो करते हैं, कुछ तो लाइट इफेक्ट होता है, साउंड इफेक्ट होता है, और फिर सीधा कैमरा जाता है वो ऑपरेशन थिएटर के बल्ब के ऊपर, लाल बत्ती ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है और वो पेशेंट आँख खोल देता है, और फिर वापस जो डॉक्टर है वो तीसरा डायलॉग बोलता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। तो सोचिए, पूरे जिंदगी में कुछ भक्ति नहीं किया, एक दिन में कोई भक्त बन सकता है? इस अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया को बहुत सारे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल मिले, क्या किसी व्यक्ति ने एक ही दिन में गोल्ड मेडल ले लिया? कितने साल से प्रैक्टिस किया होगा? तो एक साधारण गोल्ड मेडल पाने के लिए इतने साल का मेहनत करने पड़ता है, इतना परिश्रम करना पड़ता है। सोचिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान के भगवत धाम जाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये भी एक दूसरा लेवल है। फिर आता है तीसरा लेवल, थोड़ा और ऊपर का। वो कहता है कि हमको भगवान के प्रति डर नहीं है, हमको भगवान के प्रति कुछ चाहिए भी नहीं, हम भगवान की सेवा करते हैं, ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो पिताजी से डरता है, फिर बोलता है अभी डर नहीं लगता, फिर पिताजी के पास जाता है तो थोड़ा पॉकेट मनी मिलेगा, इसके लिए जाता है, फिर तीसरा जब ये और बड़ा होता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है, तो पिताजी की सेवा करता है, बोलता है नहीं मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है। तो उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मुझको भगवान की सेवा करनी है क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। फिर आता है चौथा, जो सर्वश्रेष्ठ है, मैं भगवान की भक्ति क्यों करता हूँ, क्योंकि भगवान के प्रति मुझको प्रेम डेवलप करना है, भगवान के प्रति मुझको भाव ये करना है, क्योंकि इस दुनिया में जब तक प्रेम नहीं है तब तक आदान प्रदान कैसे होगा। हाँ, जैसे एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहा है, जब तक उसको प्रेम नहीं है उसको नौकरी बोलते हैं, क्योंकि वो आदमी पगार दे रहा है इसके लिए वो काम कर रहा है। जिस दिन पगार बंद, काम बंद। लेकिन जब हम माता और बेटे के बारे में बताते हैं, माता का कुछ पैसा नहीं मिलता लेकिन दिन रात बेटे की अपने परिवार की सेवा करती है, तो ये है प्रेम। उसी प्रकार से भगवान के प्रति वो प्रेम जागृत करना है। हाँ, वो प्रेम जागृत जिस दिन हो जाएगा, फिर इस दुनिया की कितनी भी अच्छी वस्तु हो आपको फीकी लगेगी। तो ये है कृष्ण भक्ति, जो भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है। तो हम अलग अलग शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए इतने प्रकार के डिक्शनरी है, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के शास्त्र है, लेकिन जो छोटा पॉकेट डिक्शनरी है उसमें शब्द शब्द नहीं आएंगे, बड़े वाले में आएंगे, उससे बड़े वाले में और शब्द आएंगे, लेकिन जो बड़ा वाला है उसमें सब आएंगे। तो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत और जो हमारा सनातन धर्म जो है उसमें सब कुछ है। उसमें पंचम पुरुषार्थ भी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष भी है, पुराण भी है, सत्वगुण रजगुण तमगुण सब है उसमें। हाँ, इसके लिए आप कुछ कुछ पुराण में आप देखोगे तो उसमें कभी कभी ऐसा कहा जाता है, लोग बोलते हैं अरे इसमें हमको, कुछ लोग बोलते हैं कि बलि चढ़ाते थे पहले लोग, जानवरों को बलि देते थे, तो लोग क्या करते थे कि अरे बलि देते हैं तो मतलब हमको नॉनवेज खाना चाहिए, हमको मांस खाना चाहिए। लेकिन वास्तविक में वो बलि क्यों देते थे, क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण लोग थे वो किसी मंत्र को टेस्ट करने के लिए किसी जानवर के ऊपर वो एक्सपेरिमेंट करते थे, और वो एक्सपेरिमेंट करने से क्या होता था, उसको तुरंत मनुष्य जन्म मिलता था। एक्चुअली 84 लाख योनियों होने के बाद उसको मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों की कृपा से उसको डायरेक्ट मनुष्य जन्म मिलता था। हाँ, तो इसके लिए काल के प्रभाव से, इसके लिए काल देश पात्र ऐसा कहा गया है, टाइम प्लेस सर्कमस्टांस के हिसाब से अलग अलग चीज़ें हमको करनी चाहिए। इसके लिए कलयुग में किसी भी जानवर की बलि देना वो बोनोफाइड नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई बोलता है अरे शास्त्र में ऐसा कहा गया है, लेकिन उसको बताना चाहिए कि शास्त्र में क्यों कहा गया है, क्योंकि ये रीज़न है। अगर शास्त्र कहता है कि आपको मांस खाना चाहिए तो वो भी उसका रीज़न है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मांस खाने से वो छोड़ नहीं पाते थे, तो उसके लिए शास्त्र में लिखा है ठीक है आपको मांस खाना है ना, आप क्या कीजिए अमावस के दिन जाओ खुद ही उस जानवर को काट कर खाओ, लेकिन काटने के पहले आपको एक मंत्र बोलना है। क्या मंत्र बोलना है? मांसह। मांस का अर्थ क्या है? आप उस जानवर को बोल रहे हैं कि मैं आज तुमको काट के खा रहा हूं, अगले जन्म में तुम मुझको काट के खाना। तो जब ही उस व्यक्ति को समझेगा अरे बाप रे अगले जन्म में वो मुझको काटेगा, उससे अजा महीने में एक बार अमावस आता है वो छोड़ दो यार क्यों। तो ये एक प्रकार का एक साइंटिफिक मोमेंट है। अगर किसी व्यक्ति को जो दिन में 50 सिगरेट पीता है उसको आप अगले दिन बोलोगे कल से सिगरेट बंद, क्या वो छोड़ पाएगा? उसको बुद्धिमान व्यक्ति उसको क्या बोलेगा? अरे यार 50 पियोगे तो दो जल्द मर जाओगे, कम करो यार, कल 10 पीना। तो बोले ठीक है प्रयास करूँगा, 10 पीता है, फिर 5 पीता है, फिर कुछ दिनों के बाद बंद करता है। तो शास्त्र भी ऐसा है, इसके लिए शास्त्र को श्रुति ऐसा कहा गया है। तो ये इसके बारे में चर्चा है। तो वन गॉड मेनी गॉड के बारे में हमने चर्चा किया। जिस प्रकार से सूरज, जैसे सूरज हम लोग देखते हैं, सूरज का अलग अलग नाम है, कोई रवि कहता है, कोई भास्कर कहता है, कोई दिनकर कहता है, कोई सूर्य कहता है, कोई भानु कहता है, कोई अरुण कहता है, कोई दिवाकर कहता है। उसी प्रकार से भगवान के भी अलग अलग नाम हैं। उसी प्रकार से भगवान को कोई अल्लाह कहता है, अल्लाह मतलब ऑल पावरफुल, कोई जीवोवा, जीवोवा मतलब जो सबसे ज्यादा कृपालु है वो। तो कृष्ण का मतलब क्या है? सर्व आकर्षित इति कृष्ण। राम का मतलब क्या है? जो सबको आनंद प्रदान करते हैं। तो ये है भगवान के बारे में। फिर कोई कहता है कि क्या भगवान का रूप है कि निराकार है? क्या भगवान का रूप है कि निराकार है? भगवान का रूप है जिस प्रकार से हम सबका रूप है, क्योंकि हमारे पिता का रूप है, उनके पिता का रूप है, और इसके लिए इस प्रकार से भगवान का भी रूप है, इसके लिए हम हमारा इस रूप है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं परम पिता परमेश्वर हूं, हाँ, इस ब्रह्मांड का परम पिता मैं हूं, तो इसके लिए भगवान का रूप है। फिर भगवान शास्त्र में गीत भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में क्या कहा गया है? गीता में 10वें अध्याय में एक श्लोक आता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावम समामृतम। भगवान कहते क्या है कि इस दुनिया के सभी के सोर्स स्रोत कौन है? भगवान कृष्ण है। इस दुनिया में आप कुछ भी देखो, लकड़ा देखो, गद्दा देखो, सब कुछ किस चीज से बनता है? पांच धातु से बनता है। किससे बनता है? भूमि अपो, भूमि अपो अनलो खम मनो बुद्धि रे वच। तो ये पांच चीजों से बनता है और सभी चीज भगवान से आता है। जैसे पानी कहां से आता है? जल। इस दुनिया में पृथ्वी में अगर जल खत्म हो गया तो क्या कर सकते हैं? समुन्द्र में इतना पानी है कोई पी सकता है, लेकिन पीने का पानी नहीं है तो क्या होगा? तो जल भगवान से आता है। अग्नि, अग्नि भी भगवान से आता है। यहां तक कि हमारे पेट में कितने लोग को भूख लगी है? प्रसाद मिलेगा लेकिन भूख लगी है कि नहीं? तो भूख लगने की जो जठर अग्नि है, वो जठर अग्नि भी भगवान है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः पान अपान समायुक्ता पचन्ति अन्नम। तो ये अन्न पचाने के लिए जो आपका जो जठर अग्नि है, वो जठर अग्नि भी भगवान कृष्ण से आ रहा है। फिर आता है एयर, हवा। आप में से कितने लोग को कोविड हुआ था? एक ही आदमी को हुआ था, मतलब आप लोगों ने टेस्ट नहीं कराया होगा। तो जिनको कोविड हुआ था, कुछ लोग सीरियस होके उनको ऑक्सीजन लगाना पड़ा, वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। जो हवा फ्री में मिलता है उसको हजारों रुपए देने पड़े, लोगों को लाखों रुपया देने पड़े, और फिर उनकी जान बची। सोचिए, और यही हवा भगवान सबको दे रहे। सोचिए, एक दिन हवा ने, वायुदेव ने बोल दिया बड़े दिन से छुट्टी नहीं ली तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो ये हवा भी भगवान से आती है। फिर ये ईथर, जो स्पेस जिसको हम कहते हैं, वो भी भगवान से आता है। और आत्मा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इस शरीर के जो स्वामी है वो कौन है? आत्मा। तो बहुत बार जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग रोते बोलते बोलते कितना अच्छा आदमी था, वो तो बाजू में पड़ा है, कौन चला गया? हम बोलते ना चला गया, ही हैज लेफ्ट, ही हैज लेफ्ट हिज बॉडी। उसका मतलब क्या है? वो आदमी चला गया, लेकिन कौन चला गया? वो आदमी तो उधर ही है, शरीर में से आत्मा चली गई। तो वास्तविक में हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ममे वामशे जीव लोके जीव भूत सनातन। भगवान कहते कि ये सब जो दुनिया में जितने भी जीवात्मा है वो मेरे अंश है और मैं उनका परमात्मा हूं। आत्मा और परमात्मा, भगवान कृष्ण जो है परमात्मा है। और भगवान कृष्ण कहते हैं देखो सब कुछ मुझसे आ रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान से आ रहा है। और भगवान ने यही दिखाने के लिए 11वें अध्याय में गीता के ये यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था, उसमें पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करवाया था, विश्व रूप। और पूरे विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी का कैसे उदय हुआ? भगवान विष्णु के नाभि से प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के नाभि से, ब्रह्मा जी के उस कमल पे प्रकट होने के बाद भगवान का एक नाम हो गया पद्मनाभ, पद्मनाभ। और ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि भाई जनरली माता पिता से जन्म होता है, मेरा तो कमल से जन्म हुआ है, और देखने लगे कि भाई मेरे पिता कौन है, तो ढूंढने लगे, परेशान हो गए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया। फिर उनको सुनाई देता है पांच अक्षर, दो अक्षर, त प, आप तपस्या करो सब समझ जाओगे। फिर हजारों हजारों साल तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होते हैं और भगवान कहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ, अभी मेरे आदेश है कि तुम इस सृष्टि की निर्मिता करो। और फिर ब्रह्मा जी उस सृष्टि की निर्मिता करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी से आते हैं चतुष्कुमार आते हैं, फिर शिव जी आते हैं, और फिर मनुष्य को देने के लिए मनु आते हैं, स्वयंभू मनु, हाँ वैश्वत्र मनु, ऐसे अलग अलग मनु हैं, और उस मनु के इसमें मनुष्य का जन्म होता है, और फिर आदित्य, रुद्र, हाँ सोम, अलग अलग देवी देवताओं का वर्णन होता है। फिर आता है भगवान, हमने चर्चा किया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। भगवान यानी भग मतलब ऐश्वर्य, वान मतलब जिस व्यक्ति के पास ये ऐश्वर्य है उस व्यक्ति को भगवान कहा गया है। तो बहुत बार लोग कहते कि अरे ये भगवान है, लेकिन वास्तविकता में भगवान की व्याख्या क्या है, जिस व्यक्ति के पास ये छह गुण है पूर्ण पुरुषोत्तम मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में, उस व्यक्ति को भगवान कहा गया है। पहला है धन, वेल्थ, धनवान, सबसे ज्यादा धन किसके पास है, भगवान के पास। आप बोलेंगे अरे इलॉन मस्क के पास है, या कौन है वो अमेज़न का, हाँ जेफ बेजोस के पास है, या अंबानी के पास है, या गौतम अडानी के पास है, अरे उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास शेयर्स है, या उनके पास कुछ प्रॉपर्टी है, लेकिन भगवान कृष्ण के पास लक्ष्मी देवी है। पूरे ब्रह्मांड के लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, और वो लक्ष्मी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती, अनंत प्रकार की लक्ष्मियां भगवान के पास में है, इसके लिए भगवान सबसे धनवान है। भगवान का एक नाम है माधव, माधव मतलब द हस्बैंड ऑफ गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, जो लक्ष्मी के पति है माधव। फिर दूसरा है स्ट्रेंथ, स्ट्रांग, बल। इस दुनिया में बड़े बड़े लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, देखा है कभी आपने 100 किलो 200 किलो कैसे उठाते, फिर छोड़ देते, फिर बोलते गोल्ड मेडल जीत गया। लेकिन यहां पे भगवान कृष्ण ने 7 दिन 7 रात तक कैसे उठाया, हंसते खेलते छोटी उंगली पे। इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद बांसुरी भी निकाली, और उनके मित्रों को डर न लगे, अरे यार ये एक साथ दो दो काम कर रहे हैं कहीं गिरा ना दे, तो उनके दोस्तों ने ऐसा लकड़ी उठा के सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको लग रहा था वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण आनंद ले रहे हैं। तो ये है बल। फिर तीसरा आता है सुंदरता, भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि जो कामदेव है वो भी अचंभित हो जाते हैं। इसके लिए भगवान का एक नाम है मदन मोहन, यहां पर मदन मोहन मंदिर है ना, तो मदन एक बार भगवान कृष्ण को उनको हर्ष करने आए थे, उनको क्या बोलते हैं, उनको मोहने आए थे, तो जब भी उन्होंने भगवान को देखा वो खुद गिर गए, इसके लिए उनका नाम हो गया मदन मोहन। फिर आता है नॉलेज, ज्ञान, सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है, भगवान कृष्ण। आप में से कितने लोगों को गीता के 700 श्लोक आते हैं, ज्यादा बोल दिया, एक श्लोक आता है, दो श्लोक, पांच श्लोक, कभी कभी दो श्लोक याद करने को भी बहुत समय लगता है ना। यहां पर कृष्ण ने 700 श्लोक 40 मिनट में बोल दिए बिना किसी प्रिपरेशन के, और संपूर्ण वेद उपनिषद सब कुछ भगवान से आ रहा है, और हर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, हर व्यक्ति ने जन्म जन्मांतर में क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, सब कुछ भगवान को याद है। सोचो मतलब क्या उनका मेमोरी रहेगा, क्या भगवान का ज्ञान रहेगा। और फिर यश, सबसे यशवान है भगवान। तो इस प्रकार से भगवान के 5 गुण हो गए, और आखिरी क्या है, वैराग्य। भले भगवान के पास इतना धन है लेकिन वैराग्य भी है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन यहां पर भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने हैं। सोचिए कितने कितने वैरागी है। तो इस प्रकार से ये भगवान के षड ऐश्वर्य के बारे में हमने वर्णन किया। और यहाँ पर अभी आरती होगी, लेकिन दो मिनट में मैं खत्म करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को भगवान कहा गया है और बाकी 33 कोटि देवी देवताओं को देवता कहा गया है। जिस प्रकार के किसी कंपनी में एक CEO होता है और बाकी डिपार्टमेंट होते हैं, तो इस दुनिया में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है। जैसे बारिश का डिपार्टमेंट किसके पास है? इंद्र के पास है। सूर्य का सन गॉड, जिसका नाम है विवस्वान। फिर हीट डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट किसके पास है? अग्निदेव। वाटर वरुण देव। फिर जो सब्जी बनाते उसको, सब्जी को पोषण कौन करता है? चंद्रदेव, सोमदेव। फिर वायुदेव, लक्ष्मी, फाइनेंस मिनिस्टर। तो इस प्रकार से कुबेर, ट्रेजरी। तो इस प्रकार से डिफेंस मिनिस्टर, दुर्गा देवी। तो ये अलग अलग प्रकार के भगवान के ये हैं, यमराज जी, ब्रह्मा जी, और 33 कोटि देवी देवता है, और फिर इतने सारे देवी देवताओं को भगवान ये करते। तो वास्तविक भगवान कृष्ण के बारे में आज हम वर्णन कर रहे थे। वास्तविक कृष्ण कौन है? ब्रह्मा जी ने एक श्लोक में बताया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहा जाए? ईश्वरों के ईश्वर कौन है? परमेश्वर कृष्ण है। और अनादिर आदि काल से कौन है? भगवान गोविंद है। और सर्व कारणों के कारण है। अगर इस दुनिया में कुछ भी आप देख रहे, सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। और फिर गीता में अलग अलग श्लोक में भगवान के बारे में बताया, भगवान के अलग अलग जन्म कर्म दिव्य है। इस श्लोक में कहा है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म कर्म को समझ जाता है, वापस इस दुनिया में नहीं आता। फिर भगवान किसी भी लॉ, मतलब किसी भी आदेश या कानून के अंडर नहीं है। जैसे आपने सिग्नल तोड़ा तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, लेकिन भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ ये नहीं है। तो ये भगवान कृष्ण गीता में श्लोक कहते हैं, नमाम कर्मन्ति लिप्यन्ति नमे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजन्ति कर्म भी न सुबदेते। इस प्रकार से हमारे शरीर में और भगवान के शरीर में क्या अंतर है? हमारा शरीर बहुत, किसी व्यक्ति को लगता है कि अरे मेरे भी दो हाथ है, कृष्ण के भी दो हाथ है, मेरे भी दो पैर है, कृष्ण के भी दो पैर है, मेरी एक ही गर्लफ्रेंड है, उसकी इतनी सारी है। तो भगवान के प्रति लोगों को लगता है बहुत जलन होती है। तो इसके लिए गीता में भगवान कहते हैं, यस्मात् शरम अतितोऽहम् अक्षरात् इति च्युतम्हा अतोऽस्मि लोके वेदस्य प्रतिथा पुरुषोत्तमः। भगवान साक्षात भगवान है। और भगवान के अलग अलग भागवत में कथा आती है कि एक बार आग लग गई थी तो भगवान ने आग को निगल लिया। अगर इस ब्रह्मांड में कोई आदमी बोलता है मैं भगवान हूँ, तो उसको उसके मुंह में आग लगा देने की, अगर वो आग निकाल देगा तो भगवान है। या फिर किधर आग लग जाती तो फायर ब्रिगेड को नहीं बुलाने का, उसको बुलाने का। तो इस प्रकार से अलग अलग लीलाएं हैं, जैसे पूतना का वध किया, यहाँ पे तृणव्रत का वध किया। भगवान ने बालक रूप में अनंत कथाएं की, अनंत लीलाएं की, और एकदम बिना किसी कठिनाई के ये देखो अघासुर का वध किया। फिर भगवान ने अलग अलग राक्षसों का वध किया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार भृगु मुनि को सेवा दी थी कि इन तीनों में कौन भगवान है आप डिसाइड करना। तो भृगु मुनि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, हालांकि वो ब्रह्मा के पुत्र है, लेकिन वो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं करते। तो ब्रह्मा जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। फिर वो शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन शिव जी को भी आदर नहीं देते, तो शिव जी गुस्सा हो जाते हैं। फिर जाते भगवान विष्णु के पास, और विष्णु लेटे हुए थे, लक्ष्मी देवी पैर दबा रही थी, और भृगु मुनि आके सीधा छाती पे लात मारते। तो भगवान कृष्ण गुस्सा नहीं होते, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, तुमको लगी तो नहीं, लात मारी उसने, लेकिन उन्हें कहा कि आपको लगी तो नहीं, क्योंकि मेरा ये वक्षस्थल इतना कड़क है, तुमको लगा तो नहीं। तो इस प्रकार से भृगु मुनि हाथ पैर जोड़ते और बोलते कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आप सभी गुणों के परे हैं, और तत्पश्चात मैं सभी को कहता हूँ कि ये आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और ये कथा होने के बाद लक्ष्मी देवी गुस्सा हो जाती है, और लक्ष्मी देवी इतना गुस्सा हो जाती है वैकुंठ छोड़कर इस धरातल पर आती है और पद्मावती के रूप में आती है, और वही कृष्ण श्रीनिवास के रूप में आते हैं, और फिर वही बालाजी के रूप में दर्शन के लिए है। इसके लिए आप तिरुपति बालाजी में जाएंगे तो क्या बोलते हैं, श्रीनिवासा वेंकट रमणा गोविंदा। तो ये वो कथा है। तो इसी प्रकार आज का हम शीर्षक जो था हमारा, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो अभी कुछ ही दिनों में जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, तो आप कृपा करके गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए। यहाँ पर नीचे कृष्णा बुक है जहाँ पर भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाएं हैं, अगर नहीं पढ़िए तो आप घर पे लेके जाइए, और जितना हो सके भगवान कृष्णा के बारे में वर्णन कीजिए, उनका कथा सुनिए, और इस प्रकार से जन्माष्टमी के कार्यक्रम में आप यहाँ पे आइए। अगर आप बम्बई में रहते हैं तो बम्बई के इस्कॉन मंदिर में आइए, भगवान कृष्ण की बड़ी असीम कृपा आपको प्राप्त हो, यही हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आनंद राघव प्रभु। अभी हम जो भक्त पहली बार इस संडे फिस्ट कार्यक्रम में आए हैं उनका विशेष रूप से स्वागत करना चाहेंगे, तीन बार हरि बोल बोल कर, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका भक्तिमय जीवन की अच्छी शुरुआत हो, और हर रविवार को सुबह 10:30 से 12:30 इस समय में यहाँ पर आकर आप संडे फिस्ट कार्यक्रम में भाग लें। तो जैसे कि प्रभु जी ने कहा, तो 18 और 19 तारीख को हम गोवर्धन इको विलेज में जन्माष्टमी मना रहे हैं, शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक कार्यक्रम है 18 तारीख को, और 19 तारीख को शाम को 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक कार्यक्रम है। तो सबको हम आमंत्रण देते हैं कि आप आइए और इस कार्यक्रम का लाभ उठाइए। अभी श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का आरती होगा, उस पश्चात सबके लिए लंच प्रसाद की व्यवस्था है। जिन भक्तों को कूपन मिला हुआ है उनके लिए अन्न क्षेत्र में प्रसाद है, और जिन भक्तों को कूपन नहीं मिला है उनके लिए ललिता भवन में प्रसाद है। दोनों जगह पे प्रसाद की व्यवस्था है, तो अच्छी तरह से प्रसाद लेने के बाद ही आप अपने घर लौटिए। हरे कृष्णा, आरती में भाग लीजिए।
कैवल्य
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे।
सब बोलिए,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।